वहीं दूसरी ओर आस्था की आंखें लगभग 20 से 25 मिनट बाद खुलने लगी। धीरे धीरे वो उठकर बैठी। उसने अपने आप को एक बड़े ही शानदार लग्जरियस कमरे में पाया। आसपास देखकर आस्था को अंदाजा हो रहा था कि ये कितना महंगा कमरा है। वहां पर रखी हुई हर एक चीज कोई साधारण चीज नहीं थी। आस्था जल्दी से उठी और अपने आसपास अच्छी तरह से देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। हल्का सा अपने दिमाग पर जोर डालने पर उसे याद आया कि उसके सामने अभीर सिंह राठौर खड़ा हुआ था। वो सोचने लगी, क्या अभीर सिंह राठौर की जान चली गई? क्या अरमान सिंघानिया ने उसकी जान ले ली? क्योंकि अरमान ने बहुत पहले ही उसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उसके आसपास उसे किसी का भी रहना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी रहे। लेकिन अब अभीर का इस तरह से उसके आसपास रहना, खुलेआम अरमान के सामने उसे प्यार होने का दावा करना, कहीं ना कहीं आस्था को अंदर ही अंदर डर गया था। और उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अरमान ने अभीर की जान न ले ली हो, क्योंकि आस्था अपनी वजह से किसी की भी जान अपनी वजह से जाते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही आस्था की आंखें खुली, वो फटाफट से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्दी से उसे दरवाजा दिखाई दे गया। फटाफट से खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करके अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर फिराकर आस्था जल्दी ही उस कमरे से बाहर निकली। और जैसे ही वो बाहर निकली तो अरमान के शानदार ऑफिस को देखकर चौंक गई। तब उसे इस बात के बारे में पता चला कि शायद अरमान के ही ऑफिस में ही उसने आराम करने के लिए कमरा बनवाया होगा। अब जल्दी ही आस्था अपने चारों तरफ देखने लगी। उस वक्त पूरे केबिन में अकेली वही खड़ी थी। जल्दी बाहर निकलकर आसपास देखने लगी। वहां पर पूरे फ्लोर पर उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि अरमान तो ऑलरेडी मीटिंग के लिए गया हुआ था और आस्था को तो सच जानना था कि आखिरकार उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ है। तो इसीलिए वो अब वहां से नीचे जाने का रास्ता खोजने लगी और अपने आसपास अच्छी तरह से देख रही थी। आस्था को सीढ़ियां नजर आ गईं, लेकिन क्योंकि वो अभी तो बेहोशी की हालत से बाहर निकली थी तो सीढ़ियों से जाने की उसने हिम्मत नहीं की। लेकिन लिफ्ट में उसे अकेले जाने में डर लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिरकार उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। क्या अभीर सिंह राठौर जिंदा है या नहीं है, या उसकी जान चली गई है, या फिर अरमान कैसा है, अरमान उसके साथ क्यों नहीं है। इतने सारे सवाल उसके मन में थे, तो इसीलिए फटाफट से उसने अपने लिफ्ट के डर को दरकिनार करके उसमें एंट्री कर दी और फटाफट से उसने उल्टे सीधे बटन दबा दिए थे। और वो बटन उसने सीधा फिफ्थ फ्लोर का दबा दिया था, पांचवें फ्लोर का, जहां उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही थी। और आंखें बंद करके वो खड़ी हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कॉन्फ्रेंस रूम में अरमान की मीटिंग लगातार चल रही थी, लेकिन इस बीच मलाइका बार बार सिर्फ अरमान को घूर रही थी। तो अरमान को इस तरह से घूरना देव को पसंद नहीं आया था, क्योंकि देव भी इस वक्त वहां मौजूद था और देव कहीं ना कहीं मलाइका की सारी नीयत जानता था कि मलाइका आखिर क्या करना चाहती है क्या नहीं। इसीलिए देव ने बहाने से मलाइका को ऑर्डर दिया कि वो यहां से अभी और इसी वक्त चली जाए। वैसे भी मीटिंग हो रही है, उसकी यहां कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, और जाकर ये चेक करे कि कोई उसके बाद कोई और मीटिंग तो नहीं है। ऐसा बोलकर उसने बहाने से मलाइका को वहां से भगा दिया। मलाइका जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि देव ने सबके सामने उसे जाने के लिए कहा था तो उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मलाइका गुस्से से फुदकती हुई वहां से बाहर निकल गई थी और सीधा वो भी फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच गई थी, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर पर अरमान के कम से 100 से 150 कर्मी एक साथ काम किया करते थे। वो बेहद बड़ा था वो फ्लोर पर। आस्था जैसे ही लिफ्ट पांचवें फ्लोर पर रुकी, आस्था जल्दी से बाहर निकली और वहां पर 100-150 लोगों को, शायद इससे भी ज्यादा लोग होंगे। आस्था के पास इतना समय नहीं था कि वो उनकी गिनती कर पाए। उसका दिमाग उन सब लोगों को एक साथ देखकर पूरी तरह से चकरा गया था, क्योंकि लिफ्ट के ठीक बराबर से दरवाजा था। दरवाजे के अंदर से जैसे ही उसने वहां इतने सारे लोगों को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आस्था पागलों की तरह हरेक को वहां देखने लगी। वहां जितने भी लोग थे उस वक्त अपने अपने सिस्टम के सामने बैठे हुए थे। सबके सामने एक लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था, कुछ के हाथों में फाइल थी। सभी अपने अपने काम करने में पूरी तरह से व्यस्त थे। जैसे ही आस्था वहां गई और उसने इतने सारे लोगों को देखा तो अचानक से उसका सर चक्कर आने लगा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और एक टेबल पर रखा हुआ पानी का बोतल उठाकर सीधा उसने अपने होठों से लगा लिया था। जैसे ही आस्था ने एक लड़की का बिना उससे पूछे पानी पी लिया, वो लड़की घूर कर आस्था को देखने लगी और मुंह से कोड़ते हुए बोली, ए लड़की, कौन हो तुम और तुम इस तरह से यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे इस तरह से मेरा पानी पीने की? आस्था उस लड़की को एक्सप्लेन करते हुए बोली, देखिए आप हमें माफ कर दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी थी और हमारा सर भी चक्कर आ रहा था, इसीलिए हमने आपके बोतल से पानी पी लिया, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। आस्था ने बड़ी ही सिंपल और सादी सी लैंग्वेज यूज की थी। आस्था की लैंग्वेज और उसका पहनावा देखकर वो लड़की जोरों से उस पर हंसते हुए बोली, ए लड़की, कहीं गाँव से उठकर आ रही हो क्या? ऐसा लग रहा है कि कहीं की गंवार यहाँ आकर खड़ी हो गई है। कहाँ से आई हो तुम? हाँ बोलो, जवाब दो। ऐसा बोलकर वो लड़की अब आस्था को घूरने लगी। उस लड़की की थोड़ी सी तेज आवाज सुनकर सभी लोग आस्था को देखने लगे, और जब इतने सारे 150 से ज्यादा लोग एकदम से आस्था को देख रहे थे, आस्था को बड़ा ही अजीब सा लगने लगा था और आस्था का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया था।
इतने सारे लोगों को उसने जिंदगी में एक साथ फेस नहीं किया था। यहाँ तो सभी लोग एक साथ उसे देख रहे थे। तभी आस्था हड़बड़ाकर बोली, देखिए आप प्लीज बात को मत बढ़ाइए, हम तो बस यहाँ अरमान जी से मिलने आए हैं। जैसे ही आस्था ने अरमान जी कहा, सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि वो लड़की थोड़ी तेज आवाज में बोल रही थी, तो सभी लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक आस्था और उस लड़की पर चला गया था। उस लड़की का नाम निधि था, जो कि अरमान के ऑफिस में पिछले 3 सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसने भी आज तक अरमान को नहीं देखा था। अब जैसे ही आस्था ने सीधे सीधे ये बताया कि हम तो यहाँ अरमान जी को ढूंढ रही हैं, वो लड़की जोरों से हंसने लगी। अच्छा, हमें यहाँ काम करते हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है, आज तक हमने अरमान सिंघानिया को नहीं देखा, यानी हमारे बॉस को नहीं देखा, और ये लड़की जिसे यहाँ आए 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, ये अरमान सिंघानिया को देखना चाहती है और उससे मिलना चाहती है, जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग अपॉइंटमेंट लेकर भी घंटों इंतजार करते हैं, ये लड़की उनसे मिलना चाहती है। ऐसा बोलकर वो सभी अब आस्था को घूरने लगी। अब आस्था को समझ में नहीं आया कि वो उन लोगों को क्या जवाब दे, क्योंकि आस्था का पहनावा काफी ज्यादा सिंपल था और अरमान तो अब जानबूझकर आस्था को पूरे कपड़े पहनाता था, जहां से आस्था के जिस्म का कोई भी हिस्सा रिवील नहीं हुआ करता था। वहीं मलाइका देव की मीटिंग से निकाले जाने के बाद, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के चक्कर में उन 100-150 लोगों पर हुक्म चलाने के लिए वहां आ रही थी, जैसे ही वहां पर इस तरह से सब लोगों को काम धाम छोड़कर दो लड़कियों की बातें करते हुए सुना, तो वो आग बबूला हो उठी थी और चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, और इस तरह से तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई अपना काम छोड़कर इस तरह से गप्पे हाँकने की। तभी निधि घबरा गई और डरते हुए बोली, मलाइका मैडम, हमारी कोई गलती नहीं है,
ये लड़की यहाँ आ गई है और ना जाने क्या क्या बकवास किए जा रही है, और ऊपर से हेडलाइन सुनो, ये कह रही है कि इस अरमान जी से मिलना है, यानी कि कंपनी के बॉस से मिलना है। तब मलाइका घूर कर आस्था को देखने लगी थी। आस्था को हालांकि वो मॉल में देख चुकी थी, लेकिन वो काफी दिनों की बात हो गई थी, तो आस्था का चेहरा उसके दिमाग से निकल गया था, और वैसे भी उसे इस बात की गलतफहमी थी कि आस्था की तो जान चली गई होगी उस दिन। लेकिन आस्था अब काफी बदल चुकी थी। शादी के बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। उस वक्त आस्था काफी खराब कपड़ों में मॉल में थी, एकदम भिखारिन सी लग रही थी, और इसीलिए मलाइका को पहली नज़र में आस्था जानी पहचानी तो लगी, लेकिन वो उसे पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। तभी मलाइका आस्था के सामने खड़ी हो गई और आंखें मटकाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हें किससे मिलना है और तुम हो कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यहाँ बिना परमिशन के आने की, और ये सिक्योरिटी कहाँ मर गई, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं रोका? तभी आस्था रिलैक्स करते हुए बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान जी को ढूंढ रहे थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं और हम गलती से यहाँ आ गए हैं। अब तो मलाइका का पारा बढ़ चुका था, क्योंकि एक तो देव ने उसे अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से निकाला था क्योंकि वो अरमान को देख रही थी, और अब आस्था का इस तरह से बोलना उसे अंदर तक उकसा गया और मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अपनी हद में रहो दो कौड़ी की लड़की, इस तरह से सीधे सीधे यहाँ खड़ी होकर हमारे बॉस का नाम ले रही है, आखिरकार कहाँ से आई हो, कौन से गांव से उठकर आई है तू यहाँ पर? ऐसा बोलकर मलाइका अब सीधे सीधे आस्था को डांटने लगी, और वहीं आस्था मलाइका की इतनी तेज आवाज सुनकर आंखें भर आती हैं और वो बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं मलाइका जी, क्योंकि निधि मलाइका को मलाइका मैडम बोल रही थी तो आस्था समझ चुकी थी कि उसका नाम मलाइका है, तो इसीलिए वो बोली, देखिए मलाइका जी आप हमें गलत समझ रही हैं, हम वाकई अरमान जी के साथ ही इस ऑफिस में आए थे, लेकिन अब हम खो गए हैं, हमें नहीं पता कि अरमान जी कहाँ हैं, कौन से फ्लोर पर हैं। अब तो मलाइका के सर में दर्द होने लगता है और अचानक उसने आगे बढ़कर आस्था के बालों को कसकर पकड़कर बोली, दो कौड़ी की लड़की, इस तरह से खड़ी होकर और मेरे अरमान का नाम लेगी, खबरदार जो तूने अरमान सिंघानिया का नाम अपनी जुबान पर भी लाया तो, समझी? अब आस्था मलाइका के इस तरह के एक्शंस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और वो घबराने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं, हम वाकई अरमान जी के साथ ही ऑफिस में आए थे, लेकिन अब हम खो गए हैं, प्लीज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमारे बालों को छोड़ दीजिए, हमारे बालों में दर्द हो रहा है। ऐसे बोलकर आस्था मलाइका से रिक्वेस्ट करने लगती हैं, लेकिन मलाइका तो किसी और लड़की के मुंह से अरमान का नाम सुनना ही नहीं चाहती थी, तो भला इस तरह से अपने सामने खड़ी हुई लड़की को भला अरमान का नाम कैसे लेने दे सकती थी? मलाइका को क्या पता था कि जिसके वो बाल खींच रही है वो उसके बॉस की जान है, लेकिन फिलहाल तो आस्था की जान हलक में आ गई थी और वो बोली, देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं, हमें बोलने का मौका तो दीजिए, बस हम एक बार अरमान जी से मिलने दीजिए ना, वो आपको सब सच बता देंगे, प्लीज। अब आस्था घबराहट में ये भी भूल गई कि वो अरमान की बीवी है, ये बात इन लोगों को बता दे, लेकिन जो लोग उसके वहां खड़े होने पर तंज कर रहे हैं भला वो कैसे इस बात को मानेंगे? लेकिन फिलहाल आस्था ने अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहा, देखिए मलाइका जी आप हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं, अगर अरमान जी को पता चलेगा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं।
तभी मलाइका ने आस्था के बालों को कसकर पकड़कर एक झटके से छोड़ दिया था और आस्था हल्का सा पीछे निधि के डेस्क से जा लगी, जिसकी वजह से निधि का जो लैपटॉप सिस्टम रखा हुआ था वो तुरंत नीचे गिर गया था। और निधि पूरी तरह गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और तिलमिलाकर बोली, ये पागल लड़की, गवार लड़की, ये क्या किया तूने? मेरा सारा प्रोजेक्ट जो मैंने तैयार किया था, मेरा सारा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया तूने, मेरा सिस्टम खराब कर दिया। जानती भी है सिस्टम की कितनी कीमत है? कभी उससे पहले तूने कंप्यूटर देखे हैं? ऐसा बोलकर निधि आस्था के इंसल्ट करने लगी। वहीं आस्था अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से कभी निधि को देख रही थी तो कभी मलाइका को देख रही थी। वहीं मलाइका घूर कर अब आस्था को बोलती, एक तो तुमने बिना परमिशन इस तरह से हमारे ऑफिस में आकर बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं सीधा सीधा अब पुलिस को फोन करूंगी जो तुम्हें यहां से लेकर जाएगी। जैसे ही मलाइका ने ये कहा आस्था तो डर गई थी, क्योंकि अपने बचपन में एक बार पुलिस का उसने बड़ा ही भयानक रूप देखा था।